الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس مجلس کے اندر ہم سورہ انعام کی آیات پڑھ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے آیات نمبر 114, 115, 116 اور 117 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئیں تو ان میں ہم نے معارف و مسائل حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن میں سے پڑھے تھے وہ یہاں تک پچھلے ہفتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا کہ تیرے رب کے کلمات مکمل ہو گئے صدقاً اور عدلاً یعنی سچائی کے اعتبار سے بھی یہ مکمل ہے اور عدل کے اعتبار سے بھی یہ مکمل ہے مکمل کا مطلب کیا کہ صرف ان کی تعداد مکمل نہیں ہو گئی کہ بھئی 6,667 ہونی تھی تو وہ اب ساری کی ساری آ گئی تو یہ مکمل ہو گیا نہیں بلکہ مکمل کا مفہوم یہاں پر اس طریقے سے سمجھا جائے گا کہ ان میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی کوئی نقص نہیں رہ گیا کوئی فالٹ نہیں رہ گئی ان کے اندر جتنا کی ضرورت تھی انسانیت کو اس دور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اس دور میں انسانیت کو جتنے کی ضرورت تھی اتنے کے اتنے سارے کے سارے نازل ہو گئے ان میں سے کوئی کمی نہیں رہی اور اس کا یہ بھی کہ بھئی اس کے بعد والے دور کے بارے میں کیا تو اس کے بعد والے بھی جتنے دور ہیں نا وہ سارے کے سارے اسی دور کے تحت آئیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا قیامت تک کے لیے تو یہ وہی دور کہلائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا 1400 سال کے بعد کے لیے تو یہ ناقص ہوں گے 1400 سال پہلے کے لیے تو چلو ٹھیک ہے اس وقت کے لیے کامل تھے اب ناقص ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ دنیا اتنی بدل گئی ہے ترقی ہو گئی ہے اور یہ چیزیں آ گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ نہیں بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ مکمل ہے اس کے اوپر پچھلے دنوں ہم کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے تو ہم نے ان کو اس موقع پر نا جب یہ بات ہوئی تھی تو ہم نے ان کو سمجھایا ایک اور بات سے کہ جو کفر کا نظام ہے تو یہ بھی اس کے اندر جھوٹ بہت سارے شامل ہیں ٹھیک ہے اور اس کو انہوں نے آج کے دور میں سچ کے لبادے میں لپیٹ کر کے پیش کرتے ہیں تلبیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا یہ نظام بھی جو ہے نا وہ جھوٹ اور سچ ملا کر کے ایک طرح سے ایک کمپریہنسو نظام ہے ٹھیک ہے اور اس نظام کو ظاہر ہے کہ یہ آگے پروموٹ کیسے کرتے ہیں کہ تاکہ اور لوگ آ جائیں کس نظام پر دعوت و تبلیغ کیسے کرتے ہیں اس نظام کی پروموٹ کیسے کرتے ہیں اس نظام کو ٹھیک ہے نظام تو چند لوگوں نے بنا لیا نا ان کے یورپ کے جو ان کے تھنکرز تھے ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا اب مزید لوگ کیسے اس نظام کو ماننے والے ہو جائیں وہ یہ کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو اب جب ہم ان کا ایجوکیشن سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر ایون اسلامک اسکولس کے اندر وہی ایجوکیشن سسٹم پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ ان کے اس نظام کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے تاکہ اور کیا کہتے ہیں اس کو رنگ روٹ ملے ان کو ٹھیک ہے ان کا نظام بھی جو ہے نا وہ بھی اس وقت ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो पूरा निज़ाम है ये भी इन्होंने ना एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिव बना दिया है, ठीक है। सच्चाई के अतबार से कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, लेकिन मिल मिला करके झूठ सच को मिक्स कर करके ना बस इन्होंने एक गोया कि एक पूरा का पूरा निज़ाम ज़िंदगी, पूरा का पूरा एक निज़ाम ज़िंदगी, ठीक है, जिसके अंदर झूठ सच धोखा वगैरह सब कुछ मौजूद है, लेकिन पूरा एक निज़ाम ज़िंदगी है, ठीक है। तो अब वो अपने तालीमी निज़ाम के ज़रिए से आगे सिखाते हैं लोगों को ताकि और उनको मिल सकें उन एग्री करने वाले लोग, ठीक है। तो जब हम अपने स्कूलों कॉलेजों में इसको पढ़ाते हैं तो अब हमें ये फिक्र होती है कि यार हम कुछ इसके अंदर दीन भी पढ़ाएं, ठीक है, दीन भी आना चाहिए लोगों को। तो हम फिर क्या करते हैं, हम जो है ना फिर इनके इस ऑलरेडी कंप्लीट सच्चे झूठे कंप्लीट के ऊपर हम दीन के पैचवर्क्स करते हैं, पैचवर्क, ठीक है, कि भाई हम ना इस्लामियात भी पढ़ाएंगे, ठीक है, हम जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाएंगे और हम जो है ना उसके अंदर कुछ अकीदा भी पढ़ाएंगे इस्लामियात में, फिर वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, या हम कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के हम ये सब जो करते हैं ना, तो ये बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, ये एक ऑलरेडी कम्प्लीट चीज़ के ऊपर आप पैचेस लगा रहे होते हैं, ठीक है, यानी पेबंद लगा रहे होते हैं, आप उसके अंदर जाके उसको चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है, ऊपर से आप एक पैचवर्क लगा रहे होते हैं। तो बिल्कुल यही मामला जो है ना वो दीन इस्लाम का भी है कि दीन इस्लाम भी एक मुकम्मल निज़ाम है, ठीक है, और फर्क खाली दीन इस्लाम में और वेस्टर्न निज़ाम के दरमियान क्या है कि वहां पर सिदकन वादला नहीं है, वहां पर झूठ कवर्ड बाय थोड़ा सा सच, वो तलबीसी निज़ाम है, ठीक है, लेकिन इट गिव्स ए कंप्लीटनेस, ठीक है। इस्लाम में फर्क यह है कि ये भी एक कंप्लीट निज़ाम है लेकिन ये वाकई सच है, यही तो फर्क है इस्लाम में और मगरबी तहजीब के निज़ाम के अंदर, यही तो फर्क है, सच और झूठ का फर्क है, कंप्लीटनेस इनकम्प्लीटनेस का नजर आता है, ये कंप्लीट नजर आता है, वो कंप्लीट नजर नहीं आता, नहीं वो भी कंप्लीट ही नजर आता है लेकिन झूठ की बुनियाद पर है, ये सच की बुनियाद पर है। तो अब इसी तरीके से जब दीन इस्लाम के ऊपर जब हम कोई चीज ऐड करते हैं ना, ठीक है, जब दीन इस्लाम जो कि 1400 साल पहले मुकम्मल हो गए ना अल्लाह ताला के कलिमात, ठीक है, अहकामात मुकम्मल हो गए, अब जब हम कहते हैं कि जी अब तो दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, 1400 साल गुजर गए हैं और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और इतना जो है वो दुनिया के सब कुछ बदल गया है वगैरह वगैरह, तो अब ये दीन इस्लाम कैसे एप्लीकेबल होगा, तो उसका फिर हम ये जवाब देते हैं कि भाई हम इसके ऊपर जो है ना वो जमाने के जो तब्दीलियां आती हैं तो उनके हिसाब से हम इनके ऊपर भी पैचेस लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने पीछे पैचेस का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मगरबी तहजीब को जो हम पढ़ा रहे हैं तो हम दीन का खाली पैच लगा रहे होते हैं, तो मैंने वही लफ्ज है वो यहां पर भी इस्तेमाल कर लिया, तो अल्लाह जदाए खैर दे, माशाल्लाह हमारे एक नौजवान तालिबे ने बड़ा जबरदस्त हमें पकड़ लिया उसी मौके पर, बड़ा जबरदस्त, अल्लाह उसको मजीद बरकत अता फरमाए उसके समझ में, और भी बात शायद माशाल्लाह लड़के करते रहते हैं इस तरह की बातें, अकलमंदी की, बड़ी अकलमंदी की बात की, उसने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं ना पैच वर्क, तो पैच तो लगाया जाता है बड़ी भी चीज के ऊपर, ठीक है, तो दीन इस्लाम तो फटा हुआ नहीं है, तो फिर आप पैच का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, ये बात मेरी भी जहन में नहीं आई थी कि मुझे पैच का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखें इस तरीके से ना ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है इसमें तालिब इल्म भी उस्ताद को एक अच्छा मशवरा दे सकता है, बस दो चीज़ों का ख्याल पिछली क्लास में होता ना, क्या, एक अदब और एक जो है वो इखलास, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो फिर ठीक है, तालिब इल्म भी उस्ताद को मशवरा दे सकता है, तालिब इल्म भी उस्ताद की गलती को आइडेंटिफाई कर सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है, इखलास और अदब के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो हमने कहा बिल्कुल आपने सही कहा पैच का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो हमने इसलिए इस्तेमाल कर लिया था क्योंकि हमने पीछे भी पैच का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना उस वाली मिसाल के लिए, तो यहां पर भी हमने वो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पैच तो फटी हुई चीज के ऊपर लगाया जाता है और दीन इस्लाम कोई टोर्न अप किस्म की चीज थोड़ी है, वो तो मुकम्मल चीज है। तो फिर अल्लाह ताला ने और मदद फरमा दी कि फिर इसकी मिसाल ये होगी कि जैसे यहां पर यहां भी माशाल्लाह दीवार के ऊपर कैलीग्राफी टंगी हुई है, ठीक है, तो अब ये जो कैलीग्राफी की फ्रेम टंगा हुआ है जिसमें माशाल्लाह इतना खूबसूरत जो है वो डिजाइन भी बना हुआ है और अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है, तो इसको हम पैच तो नहीं कहेंगे ना दीवार के लिए कि पीछे दीवार फटी हुई थी तो घर वालों ने छुपाने के लिए ये लगा दिया, ठीक है, बल्कि दीवार तो पहले ही मुकम्मल थी, फटा हुआ बिल्कुल मामला नहीं था, टूटा हुआ बिल्कुल मामला नहीं था, बस इसको जो है ना गोया के एक फिटिंग लगा दी इसके ऊपर, ठीक है, एक फिटिंग लगा, इसको पैच नहीं कहा जाएगा, इसको फिटिंग कहा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो कि घर के अंदर ये था कि भाई थोड़ा सा हम इसको और रेलिवेंट बना लें या और थोड़ा सा लोगों के लिए, तो बहरहाल ये भी इतनी अच्छी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन इतनी कम से कम बात क्लियर हो गई कि पीछे दीवार की कोई नुक्स को छुपाने के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि एक फिटिंग के तौर पर लगाया गया, तो इस वजह से दीन इस्लाम के ऊपर जो है ना ये फिटिंग्स आती रहेंगी, 18वीं सदी के अंदर फिटिंग आई, 19वीं सदी के अंदर फिटिंग्स आई, और पीछे भी सदियों के अंदर फिटिंग्स आई, उसी तरह किसी भी सदी के अंदर भी फिटिंग्स आ रही है, जिसको के मुफ्ती हजरात का फतवा देना भी कहते हैं, जिसको के उलमाए कराम का मौजूदा जमाने के मुताबिक इज्तिहाद करना भी कहते हैं, ठीक है, कयास करना भी कहते हैं, इजमा करना भी कहते हैं, ये सारी चीजें फिटिंग्स होती हैं, लेकिन दीन मुकम्मल हो चुका, उसके अंदर नुक्स कोई नहीं रह गया, ठीक है, अब खाली उसके ऊपर उस जमाने के हिसाब से फिटिंग्स हो रही हैं, तो ये अल्लाह ताला कलमात मुकम्मल हो गए सिदकन व अदलन, ठीक है, इसके बारे में काफी सारी और बातें भी हुई थी, अब हम आगे चलते हैं। हजरत ने फरमाया कि कुरान मजीद के जो कमाल है ना, वो कमाल मुख्तलिफ सिफात के जरिए से अल्लाह ताला ने इन आयात में बताया है, ठीक है, कि ये कुरान जो है ना ये ऐसी कमाल वाली चीज है, तो उसमें एक सिफत हमने डिस्कस करी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब जो है वो छठी सिफत की बात हो रही है, ठीक है, यानी ये जो सिदकन ये भी एक कमाल था इस कुरान मजीद का, अदनन ये भी एक कमाल था इस कुरान मजीद का, अब छठी कमाल की बात हो रही है, फरमाते हैं कि छठी सिफत ये बयान फरमाई जिससे कि इस कुरान का कमाल जो है वो जाहिर होता है या एस्टैब्लिश होता है, वो ये कि ला मुबद्दिला लिकलिमाती, कि इन कलिमात को ना कोई बदलने वाला नहीं है, यानी किसी की मजाल नहीं कि उसको ऐसा बदल सके कि वो सबके नजदीक बदल जाए, बदलने को तो कोई अपने घर में बैठ करके नया कुरान मजीद लिख ले, ठीक है, वो तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो कुरान मजीद अब ऐसा राइज हो जाए कि असली कुरान मजीद दुनिया से गायब हो जाए, छुप जाए, जैसे कि ईसाइयों ने तौरात छुपा के रखी हुई है, ठीक है, या इंजील छुपा के रखी हुई है, यहूदियों ने तौरात को छुपा के रखा हुआ है, ईसाइयों ने इंजील को छुपा के रखा हुआ है, अब किसी के सामने नहीं है सिवाय एक आध लोगों के या उनके जो जो भी उनके एल्डर्स ऑफ ज़ायोन हैं उनके पास जो है वो तौरात छुपी रखी है, बाकी किसी को नहीं पता उसमें क्या है, ऐसा कुरान मजीद के साथ कोई भी नहीं कर सकता, ला मुबद्दिला लिकलिमाती, तो बदलने की एक सूरत फरमाते हैं कि असली तौर पर से अगर हम देखें तो बदलने की एक सूरत तो ये हो सकती है कि कोई इसमें गलती साबित कर दे, तो इसलिए उसको बदलने की जरूरत पड़ जाए, उसको बदल दिया जाए, गलती है भाई इसके अंदर, ठीक है, या ये कि कोई दुश्मन जबरदस्ती उसको बदल डाले, बाय फोर्स बदल डाले, तो फरमाया कि अल्लाह ताला का कलाम इन सब चीजों से अबव है, बालातर और पाक है, तो उसने खुद ही वादा फरमाया, यानी अल्लाह ने अपने कलाम में खुद ही वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, यानी हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, तो फिर किसकी मजाल है कि खुदा की हिफाजत का जो हिसार है इस कुरान मजीद के गिर्द उसको तोड़े, अंदर घुसे और इस कुरान मजीद को जो है ना वो बदल दे, चुनाचे 1400 बरस गुजर चुके हैं और हर कर्न हर जमाने में कुरान के मुखालिफ इसके मानने वालों की निस्बत तादाद में भी ज्यादा रहे हैं, कुव्वत में भी, मगर किसी की मजाल नहीं हो सकी कि कुरान के एक जबर जेर में भी फर्क पैदा कर सके, ठीक है, तो तादाद तो हमेशा ही नॉन मुस्लिम्स की मुसलमानों से ज्यादा रही है, ठीक है, लेकिन अब जो हजरत ने फरमाया कि कुव्वत में भी हमेशा नॉन मुस्लिम ज्यादा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे नौजवानों में पिछले थोड़ी ही देर पहले ये डिस्कशन चल रही थी कि भाई मामूनो रशीद का जमाना, बनू अब्बास का जमाना ऐसा था कि जिसके अंदर मुस्लिम्स वर दी सुपर पावर, ठीक है ना, और उतनी ताकत इतनी माइट जो है वो किसी और के पास नहीं थी, ठीक है, अब ये जो जुमला हमने कहा ना, तो ये जुमला तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के इस कॉल से कि हमेशा नॉन मुस्लिम ताकत में भी ज्यादा रहे, तो मामून के दौर में तो ताकत में मुसलमान ज्यादा थे, तो भाई इसका जवाब ये दिया जाएगा कि एक तो अक्सरियत की बात होती है, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो अक्सर जो है ना वो माजी में नॉन मुस्लिम ताकत के एतबार से भी मुसलमानों से ज्यादा रहे, ठीक है, और दूसरा ये भी इस पे कहा जा सकता है कि हम जो बात कर रहे थे ना वो हम एक सर्टन रीजन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि जैसे मिडल ईस्ट का जो रीजन है जिसमें थोड़ा सा आप यूरोप को भी ऐड कर लें और थोड़ा सा इधर से आप जो है वो इंडिया वगैरह को भी ऐड कर लें, तो इस पूरे रीजन को देखा जाए और नॉर्थ अफ्रीका को भी ऐड कर लें, तो इसके अंदर मुसलमान वर दी मोस्ट डोमिनेंट एंड पावरफुल फोर्स। लेकिन हो सकता है कि चाइना में उस वक्त भी, जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो उस वक्त चाइना के अंदर भी माइट के हिसाब से लोग ज्यादा ताकतवर मौजूद हो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम अक्सर की बात कर रहे हैं। तो जो उस जमाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स थे वर्ल्ड के, उनमें मुसलमान सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते थे, और ओवरऑल बाकी जगहों पे मुसलमान ना भी हो डोमिनेंट तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहरहाल तो हजरत ने फरमाया कि 1400 बरस गुजर चुके हैं और हर कर्न हर जमाने में कुरान मजीद के मुखालिफ उसके मानने वालों की नस्बत तादाद में भी ज्यादा रहे, कुवत में भी ज्यादा रहे, मगर फिर भी किसी की मजाल नहीं हो सकी कि कुरान मजीद के एक जबर जेर में भी फर्क पैदा कर सके। ठीक है, तो यूरोप में कोई जर्मनी में बैठा हुआ, क्योंकि जर्मन ये पूरी एक सिविलाइजेशन थी यूरोप की, फ्रांस जर्मनी और नाम है मुझे याद नहीं रहते, वहां पर वो कुरान मजीद लिखते और उस कुरान मजीद को जो है वो पूरी दुनिया में पब्लिश कर लेते, फैला देते, और मुसलमानों के पास से असल कुरान खत्म हो जाता, लेकिन कोई कर नहीं सका। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में इजाद हुआ, ठीक है, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जब इजाद हुआ, तो कुरान मजीद की पहली पब्लिशिंग कहां पर हुई? हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर। ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर पहला कुरान मजीद प्रिंट हुआ है, मुसलमान मुल्क नहीं था ना, आज है मुसलमान मुल्क जर्मनी। तो उस वक्त तो उनके पास एक मुमकिन था कि ये इस वक्त जो है ना वो कुरान मजीद को, क्योंकि हमारा प्रिंटिंग प्रेस है, हम चेंज करके कर देते हैं आगे, लेकिन उनकी मजाल नहीं हो सकी कोई काम कर सके, नहीं कर सके वो काम। ठीक है ना, ये नहीं कि वो नेक हो गए थे उस वक्त, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, शरीफ हो गए थे और मुसलमानों के इस्लाम के दोस्त बन गए थे, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ना पहले थे ना आज है। ठीक है, लेकिन कर नहीं सके। ठीक है, जैसे कि अबू जहल ने एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी थी, इरादा कर लिया था और उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला ने ऐसे हिफाजती इंतजाम किया, ऐसा उसको एक ऊंट नजर आया या उसको ऐसे कोई जानवर नजर आया कि जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था, कुछ ना होने के बावजूद वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला नहीं कर सका, हालांकि इरादा उसका पक्का था, असबाब भी उसके सामने पक्के थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अब उसकी कर दिया, इस तरीके से आप सजन की हिफाजत फरमा दी। तो इसी तरीके से काफिर चाहते भी है ना, वो कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस तरीके से इसका हिफाजत का निजाम अपने पास रखा हुआ है। तो दूसरी बात यह फरमाई कि हां, बदलने की एक तीसरी सूरत यह हो सकती है कि खुद हक तआला की तरफ से उसको मनसूख करके बदल दिया जाए, अल्लाह ताला खुद ही अपने कलाम को बदल दें, किसी चीज को एब्रोगेट कर दें, नस्क कर दें और दूसरी कोई आयत कर दें, जैसे अल्लाह ताला ने किया। बहुत से मकामात हैं कुरान मजीद में कि जिनमें नई आयत आई, पुरानी आयत को कुरान मजीद से निकाल लिया गया, माफ कर दिया गया, अब किसी को पता भी नहीं है कि वो आयत कौन सी। और बहुत सी ऐसे मकामात भी हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने आयत को तो छोड़ दिया कुरान मजीद के अंदर, लेकिन उस आयत का हुक्म तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये नस्क और मनसूख वाला मामला तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में चलता रहा। तो ये एक तरीका था कि अल्लाह ताला खुद उसको मनसूख करके बदल दें। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि इस आयत में इसकी तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और कुरान आखिरी किताब है, इसके बाद नस का कोई एहतमाल नहीं। ठीक है, यानी अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई दूसरा पैगंबर आता तो वो दूसरा पैगंबर आकर के कुरान मजीद के अहकामात को नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो मुकम्मल हो चुके थे उनको बाद में आके बदल देता, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब ये जो है ना लामुबद्दिला लिकलिमाती, अब इनमें कोई तब्दीली नहीं है, तो ये इससे कंक्लूड ये भी होता है कि अब कोई दूसरा रसूल आने ही नहीं वाला है। ठीक है, कोई दूसरा रसूल आने ही नहीं वाला है जो कि अल्लाह के हुक्मों को तब्दील कर सकता हो। ठीक है, तो इसमें गोया कि खत्म नबूवत की भी आयत बन गई है। ठीक है, खत्म नबूवत वालों के लिए भी, तो इसके बाद नस का कोई एहतमाल नहीं है, जैसे कि कुरान करीम की दूसरी आयात में यह मजमून और भी ज्यादा वजाहत के साथ आया है। तो एक ही मजमून को कई कई जगहों पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया है। आखिर आयत में फरमाया कि वहुवस समीउल अलीम, یعنی اللہ جل شانہ اس تمام گفتگو کو سنتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور سب کے حالات اور اسرار سے واقف ہیں, ہر ایک کے عمل کا بدلہ اس کے مطابق دیں گے. تو یہ جو فرمایا ساری باتیں کرنے کے بعد ہوا سمیع العلیم, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ سمیع العلیم ایک دم سے یہاں پہ کیوں لے کر کے آ گئے؟ بھائی اس لیے کہ سزا اور جزا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو وہ سزا اور جزا کیسے دیں گے؟ نیک کام کرنے پر جزا اور برے کام کرنے کے اوپر سزا, اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کیا کس نے کیا. ٹھیک ہے, وہ سن ہی نہیں سکتے کسی کی بات کو یا کسی کے دل کی آواز کو یا کسی کے دل کی سوچوں کو, وہ جان ہی نہیں سکتے یا کسی کے عمل کو وہ جان ہی نہیں سکتے, تو پھر سزا کیسے دیں گے, جزا کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے, بس کسی کے مشورے کے اوپر بھائی اس کو سزا دے دیجئے اور کسی نے مشورہ دیا اس کو جزا دے دیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا بھی دے رہے ہیں جزا بھی دے رہے ہیں, خود کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو. ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے اور العلیم ہے, سب کو جانتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات لانے کی وجہ یہ بنی. ٹھیک ہے, تفسیر سے یہ بات پتہ چلتی ہے, ورنہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہ آتا. اچھا بھی ایک دم سے بات ہوتے تھے, ایک دم سے السمیع العلیم کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا, کیا اس کی ریلیونس ہے یہاں پر, کیا اس کی ضرورت تھی السمیع العلیم کو لانے کی. ٹھیک ہے, اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی, انہوں نے ہم تک پہنچائی. آگے فرماتے ہیں کہ تیسری آیت میں ہفتہ اعلیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ زمین پر بسنے والے بنی آدم کی اکثریت گمراہی پر ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ صراحتاً کتنے آسان عربی کے اندر, جو تھوڑی بہت بھی ہم عربی پڑھنے والے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, سب اس کو آسانی سے اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں, اپنی اردو زبان میں اس کے مطلب سمجھ سکتے ہیں. وہ ان تو تق اکثر من فی الارض, اگر ان اگر تو تق آپ نے اطاعت کری, اکثر من فی الارض زمین میں جو ہیں ان کی میجورٹی کی, یضلوک عن سبیل اللہ, وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے, یعنی جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے نا وہ آپ کو اس کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ٹھیک ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ اللہ کے آخری رسول, اللہ کے محبوب. ٹھیک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ فرمانے وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کرنا نہیں تھا ان کی اطاعت, لیکن آپ کو بھی فرما رہے ہیں, اور یہ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ فوکس کر کے ایسی بات کرتے ہیں, اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے, اور بڑی سخت ترین الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا نہیں تھا, تو کیوں تنبیہ فرمائی؟ بس اتنا ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے, وہ یعنی اگر نبی اطاعت کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے, تو تم اطاعت کرو گے تو تم کیسے گمراہ نہیں ہو سکو گے؟ تم جو کہتے ہو کہ اچھا میں ان کی مان کے تو چل رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں اچھا مسلمان ہوں, میں اچھا جو ہے وہ انسان ہوں, اور میں اچھا اللہ کا بندہ ہوں, اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں, حالانکہ اطاعت تم ان کی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اچھے کیسے رہ سکتے ہو, یعنی سیدھے راستے پہ تم کیسے رہ سکتے ہو؟ جب میرے نبی سیدھے راستے پہ نہیں رہ سکتا ایسا کام کر کے, تو تم کیسے سیدھے راستے پہ رہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, بہت ہی آسان سی بات ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتائی. تو خیر ہم یہاں پہ تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ تیسری آیت میں حق تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ زمین پر بسنے والے بنی آدم کی اکثریت گمراہی پر ہے, آپ اس سے مرعوب نہ ہوں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے نا ایمان نہیں لے کر کے آنا, اکثریت نے ایمان نہیں لے کر کے آنا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو انفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے علم کی بنیاد پر, کیونکہ یہ انفارم کون کر سکتا ہے؟ جس کو پوری انسانیت کا پتا ہو کہ انسانیت کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یورپ میں بیٹھا ہوئے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, رشیا میں بیٹھے ہوئے لوگ رہنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو یہ بھی پتا ہو, آسٹریلیا میں اگر اس زمانے میں لوگ تو نہیں رہتے تھے, لیکن اگر آسٹریلیا میں لوگ رہتے ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہیں, افریقہ میں لوگ رہے وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی جس کے پاس علم ہوگا وہی بتا سکتا ہے نا کہ بھائی اکثریت جو ہے نا یہ گمراہی پر ہے. ٹھیک ہے, کوئی اپنے ایزمپشنز کی بنیاد پر تو نہیں بتا سکتا نا, میرا خیال ہے کہ اکثریت گمراہی پر ہے, نہیں, اس کے لیے تو یو نیڈ ڈیفینیٹ علم. اللہ تعالیٰ اپنے اس کامل علم کی بنیاد پر نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہی پر ہیں, آپ ان سے مرعوب نہ ہوں, یعنی ان سے روب میں نہ آئیں, روب میں, او میں نہ آئیں, انگریزی میں اے ڈبلیو ای او, سٹرک نہ ہو ان سے. ٹھیک ہے, ان کی باتوں پر کان نہ دھریں. قرآن نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, کہ یہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ابھی رہتے ہیں نا, جن سے آپ کا ٹاکرا پڑ رہا ہے ابھی, ان سے پہلے بھی جتنے تھے نا तो उनकी भी अक्सरियत गुमराह थी, उनकी भी अक्सरियत गुमराह थी। तो आपके पास अगर चंद लोग ईमान लेकर के आ रहे हैं ना, तो उस पर आप परेशान ना हो, पहले भी ऐसे ही हो चुका है, ऐसे ही होता रहा हमेशा। और दूसरी जगह इरशाद है, वमा अक्सरु नासी वलव हरस्त बिमुमिनीन। अजीब फरमाया कि आप कितनी ही हिर्स रखें, कितनी ही जो है वो दिल में तमन्ना रखें, ख्वाहिश रखें कि ये लोग बात मान जाएं, ईमान ले आए, मुझे अल्लाह का नबी मान लें, लेकिन इन्होंने नहीं माननी, यानी इनकी अक्सरियत ने नहीं माननी। ठीक है, तो वमा अक्सरु नासी बिमुमिनीन, इंसानों की अक्सरियत इन्होंने ईमान नहीं लेकर के आना। लव हरस्ता, चाहे आप कितने ही हरीस हो जाएं इस बात के ऊपर, अब ये हरीस का लफ्ज उर्दू जबान में तो बड़े नेगेटिव मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हरीस के लफ्ज को पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल किया, अपने नबी अलैहिस्सलाम सलाम के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, वो जो सूरह तौबा की आखिरी आयत भी है ना, उसमें भी हरीस का लफ्ज इस्तेमाल है ना, वो आपको पता है क्या आयत है वो। तो दुनिया में फरमाया कि इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया है कि दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कहना मानने लगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे, क्योंकि वो अकायद और नजरियात में महज ख्यालात और अवहाम के पीछे चलते हैं। वजह भी बता दी अल्लाह ताला ने कि इन यत्तबिउना इल्ला ज़न, नहीं तब इत्तेबा करते, नहीं मानते ये लोग सिवाय गुमानों के, अजम्पशंस के। وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, और ये लोग जो है ना नहीं इल्म रखते सिवाय यानी अटकल दौड़ाने के, अटकल पिचू अजम्पशंस, ये यखरुसून। ठीक है, ये लोग जो है ना वो कंजेक्चर्स बनाते रहते हैं, अजम्पशंस बनाते रहते हैं। थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे तो थोड़ी और जगह बन जाए पीछे से कह रहे हैं। तो रीजन भी अल्लाह ताला ने इसी आयत के अगले हिस्से के अंदर बता दी कि इसकी वजह यह है कि ये लोग इल्म को फॉलो करने की बजाय गुमानों को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी जो कि बेबुनियाद बातें होती हैं ना, उनको फॉलो करते हैं। तो इल्म की तारीफ, जैसे पहले भी आप कई दफा सुन चुके हैं कि इल्म की तारीफ ये होती है कि कोई चीज पहले मौजूद है या कोई इवेंट पहले मौजूद है, उसके बारे में आप किसी को जो मालूमात दे रहे हैं वो इल्म कहलाता है। ठीक है, जैसे इस दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है, ठीक है, तो आप किसी को कहें, उस कमरे में जो बैठा हुआ है उसको नहीं पता कि यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, आप उसको कहें कि देखो ये यहाँ पे एक दीवार है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक घड़ी लगी हुई है, तो आप उसको इल्म दे रहे हैं इस कमरे की दीवार के बारे में। ठीक है, लेकिन सामने जो मेरी दीवार है यहाँ पे कोई घड़ी नहीं लगी हुई, आप उस कमरे में बैठे हुए शख्स को कहें ये जो मेरे सामने दाहिनी तरफ दीवार है ना उस पर एक घड़ी लगी हुई है, हालांकि घड़ी नहीं लगी हुई, तो क्या ये मैं उसको इल्म दे रहा हूं? नहीं, मैं उसको इल्म दे रहा इसलिए कि इसकी बुनियाद में घड़ी है ही नहीं। अब जो मैं उसको बता रहा हूं ये इल्म नहीं हुआ, ठीक है ना, ये कुछ मैंने या तो उसको उल्लू बनाने के लिए ताकि कल को फिर वो परेशान हो कि फिर ऐसे कि घड़ी थी और फिर पता चला कि जब जरूरत पड़ी तो उसको घड़ी नहीं मिली तो उसका नुकसान हो जाएगा, इस वजह से मैं उसको ये बोल रहा हूं, या ये कि मैं मेरे दिमाग में जो है ना वो एक पिक्चर चल रही है, एक फिल्म चल रही है, मैंने कुछ पिया हुआ है, कुछ आई एम हाई ऑन समथिंग, ठीक है, तो मुझे जो है ना वो अपने इमेजिनेशन में घड़ी नजर आ रही है तो मैंने बता दिया कि ये घड़ी है, हालांकि घड़ी है ही नहीं। ठीक है, तो इखलास के साथ उसको मैंने बताया कि घड़ी है लेकिन घड़ी है नहीं, वो मेरे दिमाग में नशा जो सवार हुआ था ना, बहुत ज्यादा तेज बुखार चढ़ा हुआ था, उस वजह से मुझे घड़ी नजर आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये इल्म नहीं है, ये तो मेरा बुखार है बेसिकली। ठीक है, तो इसको इल्म नहीं कहते, इल्म तो वो चीज होती है जिसके पीछे बुनियाद हो, चीज मौजूद हो, और ये लोग जो है ना ये बुनियाद वाली चीजों को फॉलो नहीं करते, ये अपनी तरफ से घड़ी हुई चीजों को या किसी और की घड़ी हुई बातों को ये उसको सच मानना शुरू कर देते हैं और उसी को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम लोग फॉरवर्ड का बटन फौरन से दबाते हैं, सेंड का बटन दबाते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता कि ये चीज वाकई है भी कि नहीं है। ठीक है, तो फरमाया कि क्योंकि वो लोग अकायद और नजरियात में महज ख्यालात और वहमों के पीछे चलते हैं और अहकामात में ये महज तखमीने लगाते हैं कि इंसानियत का फायदा ये काम करने में होगा, अगर वो इतनी दफा ये वाला काम कर ले तो उसका फायदा हो जाएगा। जैसे कि आजकल YouTube के ऊपर बेशुमार एक्सरसाइज वीडियोस होती है ना, ठीक है, तो वो हर एक्सरसाइज वाला वीडियो वाला या वाली जो है ना वो क्लेम कर रही होती है कि अगर आप इस तरीके से पुशअप्स कर लेंगे तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, दूसरा कह रहा होता है कि नहीं आप इस तरीके से अगर जो है ना वो डाइटिंग कर लेंगे तो आप बदन कम हो जाएगा। तीसरा कह रहा होता है कि आप इस तरीके से, अब हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन अपनी अपनी, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे कि भाई वो लोगों को फायदे के मशवरे दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बस कुछ कैलकुलेशंस करी हुई हैं, कुछ अपना जाती तजुर्बा था, जाती एक्सपीरियंस था, कुछ लोगों को उन्होंने देख लिया कि भाई उनकी सेहत अच्छी होगी, तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी कैसी सेहत अच्छी होगी, मैंने इतनी दफा पुशअप्स लगाए थे इस वजह से मेरी सेहत अच्छी होगी, उन्होंने कहा अच्छा ये आप दूसरे लोग भी लगाएं, ठीक है, तो आपकी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो ये कोई एब्सोल्यूट नॉलेज तो नहीं है ना, ये कोई कंफर्म नॉलेज तो नहीं है ना, आपने इधर से सुना उधर फॉरवर्ड कर दिया, उधर से सुना इधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर से सुना इधर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये लोग भी करते थे कि इंसानियत की भलाई अहकाम में है, किसके, अल्लाह के अहकाम में। उन्होंने कहा नहीं, हमारे दिमाग के अहकाम में भी इंसानियत की भलाई है, ठीक है। और वो उन्होंने लोगों को बताने शुरू कर दिया, तो वही फरमा रहे हैं कि ये अहकाम में महज तखमीने और अटकल से काम लेते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अददी अक्सरियत से मरूब होकर इनकी मवाफिकत का ख्याल भी ना फरमाएं कि ये इतनी ज्यादा हैं तो अब ये मेरे अगर सपोर्टर्स बन जाएंगे, मवाफिक का मतलब होता है सपोर्टर बनना, हाँ में हाँ मिलाने वाला बनना, तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं करें क्योंकि ये सब बे उसूल और बे राह चलने वाले लोग हैं, ठीक है। ये तो आपको जैसा मैंने दीन बताया है आप बस वैसा ही दीन उनको पहुंचाएं, मानते हैं इनका अपना फायदा है, नहीं मानते इनका अपना नुकसान है, ठीक है। इसको तब्दील करके ना तो आप अपना फायदा कर सकेंगे, ना इनका फायदा कर सकेंगे, ना सो कॉल्ड दीन इस्लाम का फायदा कर सकेंगे, ठीक है। तो इसकी चक्कर ना, इसकी फिक्र ना करें कि कितने लोग दाखिल हो रहे हैं दीन के अंदर ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ नौजवानों से बात हो रही थी कि हमारी मजलिस में ज्यादा लोग आ जाएंगे, तब्दीर को निकाल दो, चुपके से ना तब्दीर को निकाल दो हैं ईमानियात में से। तो जितने लोग तब्दीर के एतराज की वजह से कहते हैं कि नहीं नहीं हम इसी वजह से मुसलमान नहीं होते कि तब्दीर हमें समझ नहीं, तो आप निकाल दें तब्दीर को, हो जाएंगे सारे के सारे वो मुसलमान। या और आसान बनाने के लिए पर्दे को निकाल दें तो औरतें जौक दर जौक दाखिल होंगी, जैसे अमेरिका यूरोप में भी दाखिल हो रही हैं और पाकिस्तान में भी दीन में दाखिल हो रही हैं, ठीक है ना, इंडिया में भी दीन में दाखिल हो रही हैं जौक दर जौक, ठीक है ना। फी दीन अल्लाह ही अफवाजा, लेकिन वो दीन अल्लाह नहीं है असल में, बेपर्दा के साथ एक नया दीन है। और एक साथी ने फिर मजीद एक और बात कही कि आप म्यूजिक को भी हलाल कर दें और भी लोग दाखिल हो जाएंगे, और भी लोग जो है वो सबसे बड़ी तादाद आज के दौर में तो म्यूजिक की वजह से शायद दाखिल हो जाएगी दीन के अंदर। ये ना करें, ना नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत ही करने की, ना 1400 साल गुजरने के बाद हमें इसकी इजाजत है, ठीक है। तो आखिर आयत में फरमाया कि बिल यकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उसको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलता है। बस जैसे गुमराहों को सजा मिलेगी, सीधी राह वालों को इनाम व इकराम हासिल होगा। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, ठीक है। तो इनाम इकराम हासिल होगा वगैरह, तो पीछे भी बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला का वादा है कि भाई जो बात मानता है उसके लिए हम आगे के रास्ते आसान भी कर देते हैं और उसको दुनिया के अंदर भी अच्छी जिंदगी देते हैं, ठीक है। और आखिरत में तो सिर्फ अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी अच्छी खासी अच्छी जिंदगी मिल जाती। तो इसके ऊपर एतमाद करके काम कर लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अगर ये कर लिया तो अब मैं कैसे सस्टेन कैसे करूंगा इसको, ठीक है। सस्टेन कैसे करें ना, नेकी कर ली लेकिन अब उसको संभाल नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं उसको संभालूंगा कैसे, इसके ऊपर कायम कैसे रहूंगा, बल्कि अल्लाह के वादों पर एतमाद करो कि अल्लाह ताला मदद करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला करते हैं। ये जो मशायख तकरीबन हर बयान से पहले कहते हैं ना, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ठीक है। तो अल्लाह मीन्स इट, जरा मजाक में खामखा में नहीं बोल दिया कि जो हमारी तरफ मुजाहदा करता है तो हम उसको जो है ना वो रास्ते हमवार करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला वाकई करते हैं, ठीक है। तो ये तो डाउट होना इसके ऊपर, ये तो फिर मुफ्ती साहब से माजरत के साथ, लेकिन हम तो इस चक्कर में नहीं है कि आप के निकाह तोड़वा दें कि आप काफिर हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो निकाह टूट गया, आप जा करके मौलवी साहब के पैसे दें और निकाह करवाएं ताकि मौलवी साहब की बिक्री हो जाए अच्छी खासी, ठीक है। ये चक्कर नहीं है हमारा, हम असल में बस इज़्तिराब पैदा करने के लिए ना, टेंशन पैदा करने के लिए, लिटरली टेंशन पैदा करने के लिए ये हमारा काम है, टेंशन पैदा करना। ठीक है, अब आप पसंद करें ना पसंद करें, मैं तो इतनी बड़ी पब्लिक के सामने कह रहा हूं, मेरा काम है टेंशन पैदा करना, ठीक है। तो टेंशन पैदा करने की खातिर मैं कह रहा हूं कि वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अगर हम इसका इनकार करते हैं तो हमारा ईमान किधर सलामत रहता है, हमारा ईमान कहां से सलामत रहता है, ठीक है। तो कुरान की आयत है ना, कतई है ना, कतई दलाइल के साथ मौजूद है ना, ठीक है, और कुरान का हिस्सा है ना। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं 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 होता भाई मदद यार, तुम कौन सी मदद की बात कर रहे हो, मैं इसको कैसे सस्टेन करूंगा, आई विल हैव टू यू नो दुनिया से टकराना पड़ेगा, ये करना वो करना पड़ेगा, तो आप तो काफिर हो गए, ठीक है। निकाह तोड़ने वाला मसला मुफ्ती साहब के पास जाके पूछ लीजिएगा, निकाह टूटा कि नहीं टूटा, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई फील्ड। मैं तो टेंशन पैदा करने के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप किस चक्कर में हैं, कौन सा ईमान, कौन सा अमाले साले, कौन से जो है वो इस्लामी हुकूमत, क्योंकि आगे जाकर के मसला ये आता है इस्लामी हुकूमत कायम करो, हैं मुफ्ती तकी उस्मानी के इतने सारे मदरसे हैं वो इस्लामी हुकूमत क्यों नहीं कायम करते। हम ये कहना चाहते हैं कौन सी इस्लामी हुकूमत, मुसलमान तो लेकर के आओ पहले, मुसलमान तो पहले लेकर के आओ फिर इस्लामी हुकूमत की बात करना, ठीक है। तो इस वजह से हम ये टेंशन क्रिएट करना लाजमी है, वरना तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम सही सही हो गया कि इतने तो फॉलोअर्स हैं, इतने तो जो है वो मुसलमान हो चुके हैं, इतने लोग तो दीन पर आ चुके हैं, अब पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत क्यों नहीं लेकर के आते। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तो फिर इज्जत हाथ में मिल गई ना कि इज नॉट डूइंग हिज जॉब व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल विद ईमान। तो इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब, एंड जस्ट वो तो एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, बाकी भी जितने अकाबर उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े हैं, जिनके हम कहते हैं ना लाखों मुरीद हैं, तो दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। तो एक तो मकसद हमारा हकीकत को भी वाजह करना है, खामखा की टेंशन क्रिएट करना नहीं है, हकीकत भी यही है, ठीक है। और दूसरा अकाबरीन की इज्जत का भी सवाल है भाई, अकाबरीन की इज्जत का भी सवाल है कि दे वुड डू देयर जॉब, पहले लोग ईमान तो लेकर के आए, और कैसे ईमान लेकर के आए जब वल्लज़ीना जाहदू फीना का इनकार कर रहे हैं, तो कैसे ईमान लेकर के आएंगे भाई, ईमान वाले कैसे कहलाएंगे भाई, ठीक है। तो मसला काबरीन का नहीं है, ठीक है, तो मसला हमारा है कि हम ईमान वाले हैं नहीं, हम ईमान वाले हैं नहीं, हम दाढ़ी वाले जरूर हैं, हम टोपी वाले जरूर हैं, हम तबलीगी जमात वाले जरूर हैं, हम नक्शबंदी जरूर हैं, हम चिश्ती जरूर हैं, ठीक है ना, और हम बुरके वालियां जरूर हैं हमारी बीवियां, ठीक है, और हम जो है वो फलाने वाले जरूर है, बहुत कुछ है, आलिमा कोर्स वाले भी बहुत हैं, आलिमा कोर्स वालियां भी बहुत हैं, ईमान वाले कितने हैं इसमें, इनमें ईमान वाले कितने हैं, ठीक है ना, वो बहुत कम है, आटे में नमक से भी ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो ये मसला है, तो इसी वजह से ना ये जो मगरबी जमहूरियत के जरिए से कि भाई तादाद हमारी जो है ना वो मगरबी जमहूरियत इज़ द वे टू गो, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। मगरबी जमहूरियत के जरिए से जिसके अंदर नंबर्स काउंट किए जाते हैं, और वो भी काउंट सही नहीं किए जाते, वो भी तो इतनी धांधली होती है यार, सबको पता है कितनी धांधली होती है उसके अंदर, चाहे स्लॉट मशीन्स आए चाहे स्लॉट मशीन्स ना भी आए, हमारे यहाँ तो वोट गिनने की तस्वीरें भी मौजूद हैं, उधर बैठ करके वो वर्दी वाले वोट गिन रहे हैं, ठीक है, तो धांधली भी होती होती है। लेकिन अगर धांधली ना भी हो, बिल्कुल सच्चे सच्चे वोट गिने जा रहा हूं कि कितनों ने जो है ना वो इस्लाम के लिए वोट दिया कितनों ने, तो भाई अक्सरियत तो कुरान मजीद कह रहे हैं कि अक्सरियत ने कभी भी इस्लाम के लिए वोट नहीं देना, तो फिर इस मगरबी जमहूरियत का जो निजाम है इसके जरिए से कैसे इस्लाम आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके जरिए से इस्लाम आ सकता है। तो फिर हमारे अकाबरीन जो है वो इसको रद्द करके बगावत का ऐलान क्यों नहीं करते कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, भाई उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये मुसलमान कौम जो कहलाती है ना ये ईमान वाली नहीं है, ये जो मुसलमान कौम कहलाती है ना जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क लिया है ये ईमान वाली नहीं है, ये अमाल वाली है, दाढ़ियों वाली इनमें बहुत सारे हैं, ठीक है, कुर्ते पजामे वाले इनके अंदर बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ईमान वाले नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो हम छोटा बहुत हमने मदरसे बनाए हुए हैं, छोटा बहुत जो हम जो है वो दीन के बस उलूम की प्रिजर्वेशन, जाहिरी उलूम की प्रिजर्वेशन, अल्फाज की प्रिजर्वेशन, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर हमने बगावत करी, ये इन लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं करना, इन लोगों ने हमें हमारी मदद नहीं करनी, ठीक है। तो इनफरादी इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने औलाद की ईमान की हिफाजत करें, ठीक है ना। मुल्क में ईमान का झंडा गाड़ना ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर सवाल ये होता है कि भाई क्या उनको अल्लाह के वादे पे एतबार नहीं है? अकाबरीन को भी तो अल्लाह के वादे पे एतबार होना चाहिए ना, कि भाई जब आप अल्लाह के हुक्म के ऊपर जो है वो अमल करते हैं तो फिर जो है वो अल्लाह की मदद आती है, तो फिर आप क्यों जो है वो देख रहे हैं कि लोग ईमान वाले नहीं है, तो इस वजह से हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने बगावत नहीं करनी, ठीक है। तो इसका जवाब भी इसी के अंदर शामिल है कि वल्लज़ीन जाहदू फीना, ठीक है, कि जो हमारे रास्ते में हमारी रजा के लिए मुजाहिदा करता है ना, तो उसके लिए हम रास्ते हमवार करते हैं, ठीक है। ये जो रास्ता है कि जब अवाम की एक आपके पास नहीं है, ठीक है, और असबाब के एतबार से अकाबरीन अपने इल्म की रोशनी में देख रहे हैं कि भाई हमारे पास असबाब नहीं है एस्टैब्लिशमेंट बनाने के, तो सुन्नत से हमें यह बात पता चलती है कि इस वक्त जो है ना वो जो मिलिट्री अथॉरिटी है उसको चैलेंज करना ये खिलाफ सुन्नत का, ठीक है। मिलिट्री अथॉरिटी को चैलेंज करना व्हेन यू डोंट हैव इवन मिनिमम असबाब, तो ये सुन्नत के खिलाफ है, ठीक है। तो जिस तरह से ये बात अकाबरीन पर अप्लाई होती है, यही बात इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। अब ये जरा मुश्किल हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे खुद भी अंदाजा है इस बात का, ठीक है। यही बात जो है ना इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होती है कि इंडिविजुअल्स भी जो है ना वो भी अल्लाह के हुक्म के ऊपर आओ देखा ना ताओ ना अमल करें। आओ देखा ना ताओ का मतलब समझते हैं कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, मुझे उसको अपने ऊपर जो है वो लागू करना है और मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा कि कोई जो है वो मेरी मुखालफत करे, मैं तो इस पर अमल करूंगा, ठीक है ना। अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर मी। तो ये बात हमने पहले करी थी कि भाई अल्लाह की मदद को देखें ना, आप क्यों जो है वो परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे इसके ऊपर अमल करूंगा, ठीक है। तो ये बात मुकम्मल नहीं थी, ये मैंने मुकम्मल बात नहीं करी थी, ठीक है। मुकम्मल करने का बाद में इरादा था, जो कि अल्लाह ने अभी मौका दिया है वो ये कि ये तरीका नहीं होता दीन के अहकाम पर अमल करने का कि बस किताब में पढ़ा कि दीन का हुक्म है, अब जो है ना वो सबकी ऐसी की तैसी, सबके मैं सबसे टकरा जाऊंगा, बस मैंने अमल करना है इसके ऊपर, नहीं। बल्कि जब किसी ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं कि जिसके अंदर असबाब मुखालिफ है, ठीक है ना, असबाब मवाफिक नहीं है बल्कि असबाब मुखालिफ है, यू विल फेस रेजिस्टेंस एंड यू विल फेस एनिमी फायर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है तो अब जो है ना आप उसके ऊपर अमल करने से पहले आप बड़ों के पास जाएं, आप उनसे पूछें कि मुझे इसके ऊपर अमल तो करना है, मेरे दिल की नीयत है अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, ठीक है, लेकिन असबाब मुखालिफ हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, आपको भी ये बात पता है कि बहुत मुश्किल हालात हैं, तो मुझे बताएं कि मुझे इसके ऊपर अमल कैसे करना चाहिए, ठीक है, हाउ, मुझे इसके ऊपर अमल कैसे करना चाहिए। ये अपने बड़ों से पूछ करके सीख करके फिर इसके ऊपर अमल करें, हेड ऑन कलिजन ना करें जाकर के सबके साथ कि बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं रास्ते हमवार करता हूं, बस अब मैंने करना है, नहीं। ये चीज फीना के डेफिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर फिर शैतान दाखिल होता है और वो फिर इंसान की नीयत को जो है ना वो खराब भी कर देता है कि ये असल में जो वो इस्तेकामत समझ रहा है कि मैं इस्तेकामत अल्लाह के दीन के ऊपर एतमाद के साथ काम कर रहा हूं, शैतान जो है वो इसकी नीयत को जो है ना वो जिद और हट धर्मी में बदल देता है और खुदा एतमादी के बजाय खुद एतमादी में बदल देता है, ठीक है। इस वजह से जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बड़ों से पूछ करके अमल करना चाहिए। आप कोई मेजर कदम करना उठाना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर, एक नॉर्म बना हुआ है आपके घर के अंदर, ठीक है, अब आप उस नॉर्म के खिलाफ जाकर के अल्लाह का हुक्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये कैसे होगा, सब मुखालफत करेंगे, बीवी मुखालफत करेगी, बच्चे मुखालफत करेंगे, ठीक है, या बच्ची जो है वो पर्दा करना चाह रही है, अम्मा मुखालफत करेंगे, अब्बा मुखालफत करेंगे, ठीक है, और दूसरे रिश्तेदार मुखालफत करेंगे, लेकिन वो उसका ये मुझे पर्दा करना है क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है। اب وہ اپنے مشائخ سے پوچھے, بڑوں سے پوچھے, ٹھیک ہے, کہ جی مجھے کرنا تو ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے دل کی نیت یہ ہے کہ مجھے کرنا ہے, لیکن کیسے کرنا ہے یہ آپ مجھے سمجھائیں, آپ مجھے اس کے لیے راستہ بتائیں کہ جس کے اندر منیمم ڈیمیج کے ساتھ میں یہ کام کر سکوں. ٹھیک ہے, ڈیمیج تو ہوگا کچھ نہ کچھ, لوگ خوش نہیں ہوں گے آپ کے پردہ کرنے سے, ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے گھر میں سے کوئی چیز باہر نکالنی ہے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے, بیکاز پیپل گیٹ گاٹ یوز ٹو اٹ. لیکن کیسے نکالنی چاہیے کہ میں منیمم ڈیمیج کے ساتھ یہ کام کر سکوں, یہ سیکھنا پڑتا ہے, یہ پوچھنا پڑتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں یا تو خود ہی کروں گا یا نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, یا تو اس ایکسٹریم پر کہ جی ٹکرا جاؤں گا, مر جاؤں گا, مر دوں گا, وہ یہ ایکسٹریم ہے, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں کرنا, بہت مشکل تھا میں نے نہیں کرنا. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. دین کی طریقہ کیا ہے, پوچھ کر کے چلو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوگا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے کام آسان کر دیا, بھائی پوچھو نا ان لوگوں کو جن کو کیا سمجھ میں آتا ہے, جن کے پاس تجربہ ہے, جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی پہلے سے بھی مدد کری ہوئی ہے, یا جنہوں نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کی مدد کری اس معاملے میں, کیسے گائیڈ کیا لوگوں کو, پوچھو نا ان لوگوں سے جا کر کے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. ہم قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہتے, ٹائم نہیں نکالتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم یا تو اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, مار دھاڑ کی ایکسٹریم میں, یا نو ایکشن کی ایکسٹریم میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مغربی جمہوریت پھر واپس اگر آتے ہیں, اس کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے. ہمارے اکابرین جو ہے نا وہ یہ کنفرنٹیشن والا راستہ اسی لیے اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسباب کے درجے میں یہ چیز نہیں وقت مبارک ہونے والی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکابرین, اکابرین کیوں اکابرین ہے بھائی, کیوں اتنے سائز بڑا ہو گیا ہے, 6 فٹ کے نہیں بلکہ 16 فٹ کے ہو گئے ہیں, وہ اس وجہ سے وہ اکابرین ہے نہیں, علم کی وجہ سے نا, رائٹ, فقاہت کی وجہ سے وہ اکابرین ہے, ورنہ ان کو ہم اکابرین کہہ کیوں رہے ہیں, ان کے سائز کی وجہ سے, ان کے یعنی لمبائی چوڑائی کی وجہ سے ان کو اکابرین کہہ رہے ہیں, علم کی وجہ سے اکابرین کہہ رہے ہیں. تو بھائی جو اکابرین علم کی وجہ سے وہ اکابرین ہیں, تو علم والا اجتہاد نہیں کرتا, ٹھیک ہے, علم والے کے پاس اجتہاد کا قلمدان نہیں آتا, تو وہ علم کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ کام کرنا مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے, سنت کے مطابق ہے کہ سنت کے خلاف ہے, قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے تو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ نہیں اس وقت یہ مناسب نہیں ہے, قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف ہے یہ کنفرنٹیشن کرنا, آپ کو اعتراض ہوتا ہے کیوں بھائی, کیوں اجتہاد کر رہے ہیں, یہ میری مرضی پہ کیوں نہیں عمل کرتے, میں چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو میرا یہ جو اکابرین ہے تو یہ میری چاہت کے مطابق اسلامی حکومت کیوں نہیں قائم, وہ اللہ کے بندے تم ان کو اکابرین کہہ کیوں رہے ہو. آج یہ بڑا بڑا ہو گیا نا, یہ جتنے خلافت والے ہیں نا, خلیفہ, ٹھیک ہے, خلافت قائم کرنے والے, ان سب نے عالم کورس جوائن کر لیا ہے, آن لائن عالم کورس اویلیبل ہے نا, ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں آن لائن عالم کورس اویلیبل ہے, سب نے عالم کورس جوائن کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب عالم کورس جوائن کرنے کی وجہ سے ان کو پتا چل گیا, اچھا یہ اکابر ہیں, یہ اکابر ہیں, یہ اکابر ہیں, اکابر ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو پتا چل گیا کہ یہ اکابر ہیں, لیکن تربیت تو نہیں ہوئی نا, نفس کا تزکیہ تو نہیں ہوا نا, ٹھیک ہے نا, اگلے بندے کو بڑا ماننا اور اس کی بات ماننا یہ تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, ٹرمینالوجیز پتا چل گئی عالم کورس کی وجہ سے, عالمہ کورس کی وجہ سے, لیکن اصل میں بیگیج تو وہی ہے, اسلامی حکومت قائم ہو جائے, یعنی میری مرضی پوری ہو جائے, اصل میں بیگیج کیا ہے, اسلامی حکومت بھی نہیں, میری مرضی پوری ہو جائے, یہ اصل میں لنگرنگ آن ان دا بیکر. اب جو ہے نا اکابرین کہنا شروع ہو گئے لیکن مرضی اپنی پوری کروانی ہے, یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے ایسی مجلس کے اندر, تو وہ کہتے نہیں نہیں کنفرنٹیشن کیوں نہیں کرتے, یہ جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کرتے, اللہ کے بندے ہم تو پروف کرتے ہیں نا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو, تم ایمان والے ہی نہیں ہو, کیونکہ کون سی اس آیت کے اوپر ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری آیات, بہت ساری نہیں بلکہ تقریباً آئیں تو پتا چلے گا کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اعتماد شاید کسی آیت کے اوپر, شاید کسی آیت کے اوپر, ٹھیک ہے, بس توبہ کرنی چاہیے, یہ توبہ کی علامات ہی ہمارا آخری ہوپ ہے, اور کچھ بھی ہمارا ہوپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ایمان پہ خاتمہ کا صرف ایک ہوپ ہے, وہ یہ کہ ہم نے صدق دل سے توبہ کری ہے کہ نہیں کری, اور ہمارا کوئی ہوپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ قرآن کے اوپر تفصیلی ایمان کوئی نہیں, ٹھیک ہے, تو ٹینشن اس وقت جو ہے نا, ٹینشن میں مبتلا رہنا ये हमारी खैर है इसके अंदर कि हम टेंशन में चलाए ताकि हम तौबा करते रहे। ये टेंशन खत्म हुई, तौबा भी जाए, तौबा भी गई फिर उसके बाद, और लग जाएंगे फिर वही दुनिया में इस्लाम, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम लाने के चक्कर में लग जाएंगे। तौबा से भी हाथ धो के, हाथ धोएंगे तो ये तो एक आखिरी हमारे पास सहारा रह गया था तौबा, और है क्या हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ तफसीलात हैं जिनमें के दुनिया के अंदर अपने हालात के अंदर हम इस कुरान मजीद की तफसीर को कैसे समझ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआई करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को अपने दिल से पढ़ने, सीखने, समझने और इसको अपना दिन रात का मशगला बनाने की तौफीक अता फरमाए। रिस्क का वाकई जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, ठीक है, और अल्लाह ताला फिर रिस्क के असबाब भी, ये नहीं होगा कि अब हमने कुरान मजीद को कर लिया है तो ऊपर से फिर मुर्गियां चरगे जो हैं वो ऊपर से टपकना शुरू हो जाएंगे, नहीं, ये तो बनी इसराइल के साथ एक दफा हो गया, हमारे ऊपर अब चरगे टपकेंगे नहीं आसमान से, ठीक है, लेकिन चरगे घर में पहुंचने के लिए अल्लाह ताला मोहसिन भाई को खड़ा कर देंगे। वो कभी जामुन लेकर के आ रहे होंगे, कभी सलमान भाई आम लेकर के आ रहे होंगे, कभी जो है वो दानिश मकबूल भाई जो है ना वो चिलगोजे लेकर के आ रहे होंगे, ठीक है, तो असबाब के जरिए से अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाएंगे। तो क्या जो IBM में काम करता है वो क्या बगैर असबाब के रिस्क आ रहा होता है? उसने IBM को अपना सबब बनाया हुआ है रिस्क का, ठीक है ना। कोई इंटेल में काम कर रहा है वो क्या बगैर असबाब के रिस्क कमा रहा है? उसने इंटेल को अपना सबब बनाया हुआ है। कोई ट्रैवल एजेंट है मुस्करा रहे हैं तो वो क्या बगैर असबाब के ट्रैवल एजेंट साहब जो है वो अपना पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये असबाब ही है ना। तो इनको भी अल्लाह ताला ट्रैवल एजेंसी से खिला रहा है, इनको अल्लाह ताला IBM से खिला रहा है, इनको अल्लाह ताला जो है वो किसी इन्वेस्टमेंट फर्म से खिला रहा है, इनको अल्लाह ताला किसी IT फर्म से खिला रहा है, ठीक है, तो हमें अल्लाह ताला मोहसिन भाई के थ्रू खिला रहे हैं। कहते नहीं 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 ये तो बड़ी गंदी बात है, ये तो बड़ा ना गलत बात है, ये आप समझते होंगे गलत बात, हमने अपने हज़रत जी से अल्हम्दुलिल्लाह यही सीखा है, ठीक है ना। जब कोई लिफाफा आता था ना तो अजी यूं करके सबके सामने ऐसे करके फाड़ते थे और फरमाते थे कुछ लोगों को छप्पर फाड़ के मिलता है, कुछ लोगों को लिफाफा फाड़ के मिलता है। हजरत जी कहते थे, सबके सामने कहते थे, ठीक है, हराम मना है भाई, आपने अपनी तरफ से हराम हलाल को हराम कर दिया तो ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। आपने अपनी तरफ से हराम को हलाल और हलाल को हराम किया, भाई आपका मसला, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। हम तो बबांगे दहर, बबांगे दहर डंके की चोट पर कहेंगे कि ये हलाल ही नहीं है बल्कि हलाल में भी ऊंचे दर्जे का हलाल है, जिसको हदिया कहते हैं। माले गनीमत के बाद दूसरे दर्जे की हलाल और तैयब रिस्क हदिया होता है। वो IBM में काम करने वाला नहीं बल्कि हदिया, ठीक, वहां पे HR से मिलने वाला रिस्क नहीं बल्कि हदीये वाला रिस्क, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह के दीन को समझें, इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला खिलाएगा, चाहे वो IBM के थ्रू खिलाए, चाहे वो जाए इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू खिलाए, चाहे वो IT फर्म के थ्रू खिलाए, अल्लाह के दीन को अपनी गनी अपना गम बनाए ना, अल्लाह के कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछोना क्यों नहीं बनाते कि उसके अंदर चीजें मौजूद थी, हमें पता ही कुछ नहीं कि उसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, क्यों नहीं अपना ओढ़ना बिछोना बनाते, ठीक है। तो रिस्क अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए से नहीं दे सकता? किसने हराम किया है इसको कुरान मजीद के जरिए से रिस्क खाने को, किसने हराम किया है भाई? हदीस के जरिए से रिस्क कमाने को किसने हराम किया है? फिका के जरिए से रिस्क कमाने को किसने हराम किया है? सवाल चंद बेवकूफों के, आप बेवकूफों को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी मर्जी भाई, आपकी मर्जी। आप समझते हैं जो दफ्तरों के चक्कर काटने वाले ये हराम ये हलाल खा रहे हैं, और जो मदरसे के और खानकाहों के और जो है वो दीन के जो इज्तमाआत के चक्कर काटने वाले हैं वो हराम खा रहे हैं, क्योंकि वो दफ्तर नहीं जाते, वो दुकान पे नहीं बैठते, तो वो हराम खा रहे हैं, इसका मतलब है। तो आते क्यों उनकी मजलिस में फिर, हराम खाने वालों की मजलिस में क्यों आते हैं फिर आप? जाए ना फिर IBM के किसी वो पीर साहब के पास जाएं जो IBM में बैठ करके पीरी मुरीदी बचा रहा हूं, नहीं, या किसी जो है वो फर्म के जो है वो जाए जाकर के वहां पर उनके उस्ताद साहब के पास जाए, उनसे कहेंगे मैं आपके पास बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए आया हूं, उनसे बुखारी शरीफ पढ़ने जाकर क्या, ठीक है। तो ये बातें हैं, हमें समझ में आ जाएं तो फिर हमें बड़े बड़े मसले समझ में आ जाएंगे, और यही नहीं समझ में आती इसी वजह से ना अंधेरे में टामक टोइया, न ये समझ में आता, न ये समझ में आता। हर बंदा उल्लू बनाने के लिए आया हुआ होता है सोशल मीडिया के ऊपर, हम उल्लू बने चले आ रहे हैं, उल्लू बने चले आ रहे हैं, उल्लू बने चले आ रहे हैं। क्योंकि जो बुनियाद है सिंपल लॉजिक, प्लेन सिंपल लॉजिक, उसको मानने से हम इनकार करते हैं। इसी वजह से काफिर होते हैं। काफिर कौन होता है? जो कुरान हदीस की बातों का इनकार करे, ठीक है, और उसको समझाने वाले जो मशाइख की बातें हैं, जो कि वही समझा रहे होते हैं, उसका इनकार करे, इसी को तो काफिर कहते हैं। अब कर लो जितनी ये बातें करनी है, काट लो जितने चक्कर काटने हैं कहीं जाकर, किसी जगह पर जाकर के। कुफर के साथ ठेंगा मिले, ठेंगा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तौबा कलमा भी पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين। छह मामूलात मशाइख नक्शबंद बताते हैं, सुबह शाम इस्तिगफार की तस्बीह करना, दुरूद शरीफ की सुबह शाम 100 मरतबा तस्बीह करना, कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करना, इल्म और इरादे से गुनाहों को छोड़ देना, इल्म और इरादे से गुनाह करने को छोड़ देना, और थोड़ी देर के लिए मुराकबा करना और शेर के साथ रबते में रह करके उनसे अपने इनफरादी मामलात के अंदर दीन को सीखना और अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर कैसे अमल करना है वो उनकी गाइडेंस में करना, ना कि शैतान की गाइडेंस में करना, इसको राबता शेख कहते हैं। ये छह मामूलात हम पाबंदी से और इखलास के साथ करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, जैसे कि हज़ारों नई लाखों लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसान करी हैं, जैसे हमारे रज़ी फरमाया करते थे। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल आला वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। ऐ करीम आका, हम तेरे आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, सीनों को रोशन मुनव्वर फरमा, अंग अंग हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपने जिक्र को जारी फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत में से हमें वाफिर हिस्सा अता फरमा। ऐ अल्लाह, आपसे मोहब्बत करने वालों में हमें शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, आपसे बुग़्ज़ रखने वालों में हमें शामिल ना फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमने ज़ुबान से कलिमात पढ़ लिए, ऐ अल्लाह इनके असर को हमारे दिल में भी उतार फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ज़ाहिरी बातनी हर लिहाज से, ऐ अल्लाह बातिल नज़रियात से, बातिल अफकार से, ऐ अल्लाह बातिल फ़िक्रों से, ऐ अल्लाह कुफर से, काफिरी से, ऐ अल्लाह क़ुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बद एतमादी से, ऐ अल्लाह सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, कुफर के निज़ाम, कुफर के वादों के ऊपर एतमाद करने वाली गुनाह अजीमा से हमें तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, हमें अपने इल्म को, अपने तालीमी निज़ाम को नबी अलैहिस्सलाम के बनाए हुए तरीके के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें धोखों से निजात अता फरमा। अल्लाह, धोखा देने से भी निजात अता फरमा, ऐ अल्लाह सेल्फ डिसेप्शन से भी हमें निजात अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें हकीकत से आशना फरमा, ऐ अल्लाह उसको मानने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह उसकी इत्तेबा करने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जो बातिल हैं ऐ अल्लाह उनको बातिल मानने की तौफीक नसीब फरमा, उनसे इज्तनाब करने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह नफ्स शैतान के मकरो फरेब से हमारी हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा, लशर पसंदों के शर से हिफाजत फरमा, अल्लाह फितने महिया से हिफाजत फरमा, फितने ममात से यानी जिंदगी और मौत के फितनों से हिफाजत फरमा, अल्लाह फितने दज्जाल से हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे शर से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे नफ्स के शर से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हर किस्म के शरूर से फितन से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे शर से हमारे साथ रहने वालों की हिफाजत फरमा, हमारे अहल अयाल की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह पास पड़ोस की हिफाजत फरमा, दोस्त अहबाब की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत के दुखों का मदावा फरमा, ऐ अल्लाह हमारे हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह इस दीन की हिफाजत जिसका जिम्मा तो आपने अपने जिम्मे लिया हुआ है, ऐ अल्लाह उसके लिए हमें हमारे अहल अयाल को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह नजरियाती तौर पर, ऐ अल्लाह फिक्री तौर पर हमें आज़ादी अता फरमा, ऐ अल्लाह कुफर काफरी से आज़ादी अता फरमा, ऐ अल्लाह अपनी गुलामी के लिए कबूल फरमा, ऐ अल्लाह आपकी गुलामी के लिए कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा, जो मांगना चाहिए तो नहीं मांग सके, ऐ अल्लाह हमें अपने गैबी खजानों से वो भी अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे जो मशायख अजीज व अकारिब दोस्त रिश्तेदार फौत हो चुके, ऐ अल्लाह खुसूसन हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, ऐ अल्लाह उन सबको हमारी तरफ से बेहतरीन जदा अता फरमा, ऐ अल्लाह जिनकी मगफरत हो चुकी, जिनकी मगफरत नहीं हुई इनकी मगफरत फरमा, ऐ अल्लाह जिनकी मगफरत हो चुकी अपने कुर्ब के आला दर्जात अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें उन के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमारे छोटों को हमारे लिए सदका जारिया बनने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह अपने कुरान की मोहब्बत शदीदा नसीब फरमा, हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शदीदा नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जो दुनिया हमारे और आपके रास्ते में रुकावट बनने वाली चीज़ है, ऐ अल्लाह उससे हमें नफरत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह कराहियत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह उसकी मोहब्बत से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जैसा आप चाहते हैं नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे, हमारे मशायख चाहते थे, ऐ अल्लाह वैसा हमें बनने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमें दिनों का इत्मीनान नसीब फरमा, घरानों की खुशी और इत्मीनान नसीब फरमा, ऐ अल्लाह मुआशी मुआमलात का इत्मीनान और सुकून नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह जो भी मरीज हैं किसी किस्म की भी जाहिरी बीमारी जब बातनी बीमारी में मुबतला है सबको शिफाए कामिला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमा, हमारी तमाम दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा, जिन्होंने अपना घर पेश किया, अपनी सलाहियतें, अपना वक्त, अपनी फिक्रें पेश करी हमारे इस दीन की नस्बत से इकट्ठे होने के लिए, ऐ अल्लाह उनको इनके बदले अपनी मोहब्बत में से वाफिर हिस्सा अता फरमा, ऐ अल्लाह हर किस्म के शरूर और फितन से उनकी हिफाजत फरमा, आल औलाद की हिफाजत फरमा, घर बार की हिफाजत फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।